अलीजा से वो लॉकेट लेने के बाद रिवांश ने उसे अपने गले में धारण कर लिया था। लॉकेट पहने होने के बावजूद भी वो जंगल में था और उसे अभी भी उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सूरज अस्त होने में अब कुछ ही समय शेष है। क्या हमें इस लॉकेट की शक्तियों को परखना चाहिए? अगर ये लॉकेट नकली हुआ और हम बाहर गए तो जल जाएंगे, लेकिन नहीं गए तो ये कभी पता नहीं कर पाएंगे कि उस जादूगरनी ने सच कहा था या नहीं। रिवांश कुछ देर तक इसी असमंजस में था। जैसे तैसे उसने खुद को समझाया और जंगल से बाहर की तरफ कदम बढ़ा लिए। शाम के 5 बज रहे थे और सूरज ढलने में कुछ समय ही बाकी था। रिवांश बाहर निकला, लेकिन उसके बावजूद सूरज की रोशनी में उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब वो लड़का त्रिशान और वो जादूगरनी अलीजा सही कह रहे थे। ये तो अच्छा हुआ। अब हम बाहर रहकर पता लगा सकते हैं कि क्या त्रिशान सही कह रहा था। क्या सच में इस दुनिया में अच्छाई का अंत होने वाला है? खुद से बातें करते हुए रिवांश ने अपने कदम शहर की तरफ लिए। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। जंगल में अक्सर जो भी शिकार आता उसके कपड़े या अन्य ज़रूरत के सामान वो लोग ले लेते, ताकि उन्हें बाहर जाने में दिक्कत ना हो। वो शहर में सबकी तरफ हैरानी से देख रहा था। उसे देखकर कुछ लड़कियां उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरफ खिंची चली जा रही थीं। सब कुछ कितना बदल गया है, कितने अजीब कपड़े पहन रखे हैं इन लोगों ने। यहाँ इतनी ठंड है, उसके बावजूद भी इस लड़कियों ने ऊपरी शरीर को तो गर्म कपड़े से ढक रखा है, लेकिन नीचे से इतने छोटे कपड़े पहन रखे हैं मानो पैरों को तो ठंड ही ना लग रही हो। रिवांश उनकी तरफ अजीब सी शक्ल बनाकर सोच रहा था। घूमते हुए वो काफी आगे निकल आया था। एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे खड़े होकर वो उसे देख रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रिवांश उस आदमी को देखने के लिए पलटा तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसने नीले रंग का सूट पहन रखा था। देखने में वो लगभग 70-80 साल का लग रहा था, लेकिन कपड़ों से काफी रहीस नजर आ रहा था। जी, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? रिवांश ने हैरानी से पूछा। मैंने यहाँ एग्जीबिशन से कुछ मूर्तियाँ ली हैं। मेरे पास इन्हें रखने के लिए अपनी गाड़ी में जगह नहीं है। क्या तुम पीछे मेरी दूसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आकर इन्हें सुरक्षित मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? उस आदमी ने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं। आप इस तरह कैसे हम पर विश्वास करके इतनी महंगी चीज़ की जिम्मेदारी हम पर सौंप सकते हैं? अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं, आप इतने ही अमीर हैं, तो इस काम के लिए तो और भी लोग मिल जाएंगे, और हम इस छोटे काम के लिए नहीं हैं। रिवांश ने जवाब दिया। बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरी पोती के। वो अभी बहुत छोटी है। कहने को तो घर में बहुत से नौकर हैं, लेकिन उन पर थोड़ी ना विश्वास कर सकता हूँ। तुम मुझे देखने में सीधे साधे लगे, इसलिए मदद का बोला। लेकिन आजकल की दुनिया में किसी से भी मदद की उम्मीद लगाना बेकार होता है। जब अपने ही मदद नहीं करते तो फिर अजनबी कैसे करेंगे? कहकर वो बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा। रुकिए, ठीक है, हम आपकी मदद कर देंगे। बताइए हमें कहाँ जाना होगा? रिवांश के कहते ही वो आदमी मुस्कुराया और अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे मेरी दूसरी गाड़ी खड़ी है, उसमें एक ड्राइवर है, वो तुम्हें मेरे घर तक पहुंचा देगा। ध्यान से, उन मूर्तियों को कुछ होना नहीं चाहिए, उन्हें मेरी अमानत समझ लेना। कहकर वो आदमी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। रिवांश ने इधर उधर देखा तो सामने उसे एक और गाड़ी नजर आई, जिसके आगे सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसने इशारे से रिवांश को अपने पास बुलाया और गाड़ी में बैठने को कहा। रिवांश उस गाड़ी में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ चुका था। वो पांचों मूर्तियां गाड़ी के बेकशीट पर थीं। चलते हुए रिवांश की नज़र गाड़ी के फ्रंट शीशे पर गई, जिसमें पांचों मूर्तियां नजर आ रही थीं। उन पांचों मूर्तियों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मानो वो रिवांश की तरफ ही देख रही हों। उसने मुड़कर उन मूर्तियों को देखा तो उन सबकी आंखें बंद थीं। हमने जब गाड़ी के शीशे में देखा तब तो इन मूर्तियों की आंखें खुली थीं, और अब लगता है हमें ही वहम हो रहा है, सोचकर रिवांश चलती हुई गाड़ी से बाहर के नज़ारे देखने लगा। क्रमशः कीप सपोर्टिंग।